आरवी ने इतना ही कहा, वो भी बेहद मुश्किल से बोल पाई, कभी आंखें मीची तो कभी होंठ भीचे इन चंद लफ्ज़ों को कहने के लिए। उस वक्त उस पर हो रहे दर्द को वहां मौजूद सब देख पा रहे थे, दर्द ही नहीं आंसू भी जो आंखों से निकलकर गिराने पर आ गए थे। विनीत वहां रुक नहीं पाया, उसने डॉक्टर के कंधे पर हाथ रख कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि आरवी की आवाज़ में भी उस वक्त बेहिसाब दर्द छलक रहा था। वो सिर्फ दर्द से ही नहीं तड़प रही थी उस वक्त, बल्कि अयांश से बात करने के लिए भी तड़प रही थी। अयांश की आंखें भी उस वक्त ना चाहते हुए भी नम हो गईं। वो एकटक आरवी की ओर देखे जा रहा था, तभी आरवी फिर बोली, कुछ सवाल के जवाब। इतना ही कह पाई कि उसकी सांसें चढ़ने लगीं, क्योंकि उस वक्त वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई और खुद को संभाल नहीं पाई। एक तो सक्षम से मिला धोखा, ऊपर से उन हजारों सवालों के बीच उलझ कर रह गई जिसके जवाब सिर्फ अयांश के पास थे। आरवी की पकड़ अपने कोट पर और बढ़ते देख अयांश ने उसकी ओर देखते हुए डॉक्टर से कहा, आगे आइए डॉक्टर और पेशेंट को संभालिए। डॉक्टर ने नर्स से कहा, जल्दी इंजेक्शन दो। नर्स ने जल्दी से डॉक्टर को इंजेक्शन दिया। डॉक्टर आरवी के पास बैठ आरवी के हाथ पर इंजेक्शन लगाता है। अयांश की नज़र आरवी पर टिकी थी। आरवी चढ़ती सांसों के साथ खुल बंद आंखों से अयांश को देख रही थी। तभी इंजेक्शन लगते ही उसकी सांसें सामान्य चलने लगीं और वो फिर सो गई। तभी अयांश ने एक ही झटके में आरवी से अपना कोट छुड़ाया और टेक केयर बोल कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर ने नर्स से कहा, ऑक्सीजन मास्क दो। जैसे ही अयांश बाहर निकला तो बाहर रेलिंग के पास खड़े विनीत ने कहा, नहीं देख पाया ना दर्द में, हुई ना तकलीफ, इसे क्या नाम देगा, मोहब्बत या नफरत। सच मान अयांश, आरवी को किसी दूसरे से मिले दर्द में देख तेरी भी जान सूख रही है। बेशक तूने उसे कितने भी दर्द दिए हों, पर अब किसी और ने उसे चोट पहुंचाई है, ये तुझे भी रास नहीं आ रहा। सच कहा ना। ये सुन अयांश कुछ नहीं बोला और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। धड़ाम उसके कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि विनीत का भी दिल दहल उठा। अयांश कमरे में पहुंच तेजी से इधर उधर चलने लगा। उसने अपनी टाई लूज की और कोट उतार बेंट पर फेंक दिया। कभी सर पकड़ता अपना तो कभी बेंट पर बैठ आहें भरने लगा। उस वक्त क्या हो रहा था उसके साथ उसे भी पता नहीं चला। माथे पर पसीना, मुठियां कसकर भींची हुई, जबड़ा कसा हुआ, बैठे बैठे भी लगातार हिल रहे थे उसके पैर। इस वक्त इतना गुस्सा था उसके अंदर कि उसकी माथे और हाथों की उभरी नसें बखूबी बता रही थीं। तभी अयांश उठा और कमरे से बाहर निकला। विनीत अभी भी रेलिंग के पास खड़ा था। अयांश को अपनी ओर आते देख कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी कॉलर पकड़ अपने रूम में ले गया और ले जाकर बेंट पर पटक दिया। विनीत अयांश की ओर देख बोला, अयांश कूल डाउन, सुन रहा है ना, घर में बाहर के लोग हैं, डॉक्टर भी और आरवी भी पास के कमरे में है, सुन देख। बेंट से खड़ा होकर विनीत आगे कुछ बोल पाता कि अयांश रूम बंद कर अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड कर उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ विनीत के जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही विनीत बेंट पर जा गिरा। अयांश ने उसकी कॉलर पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठाया। जस्ट शट अप, और बाहर तो तब पता चलेगा ना किसी को जब यहाँ की आवाज़ बाहर जाएगी। ये बोलते ही अयांश ने एक मुक्का और विनीत के मुंह पर दे मारा, जिससे वो ओंधे मुंह बेंट पर जा गिरा। विनीत शांत होते हुए अयांश की ओर मुड़कर देखने लगा। तभी अयांश उसे और धोने लगा। अयांश को ना रुकते देख विनीत ने भी उसे बेंट पर गिरा लिया। बहुत गुस्सा आता है ना गुस्से में, अब कर निकाल अपनी भड़ास। विनीत ने भी अयांश के दो चार थप्पड़ जड़ दिए। दोनों के बीच बेंट पर लड़ते झगड़ते चिल्लाते हुए हाथापाई शुरू हो गई, पर कमरे का शोर बाहर तक नहीं जा पाया। अयांश का कमरा था ही ऐसा कि उसकी एक आवाज़ बाहर तक नहीं जाती थी। रूम बंद हो पूरी तरह से तो घर के लोगों को भी पता ना चले कमरे में क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते जा रहे थे। तभी अयांश ने विनीत को झटकाकर जोर से बेंट पर पटक दिया और गुस्से में टेबल से कांच का वॉश उठा लिया, पर जैसे ही मारने को हुआ उसका हाथ हवा में रुक गया। विनीत बेंट पर पड़ा अयांश की ओर देखते हुए अपने होंठ के पास आए खून को पोंछते हुए बोला, रुक क्यों गया, मार दे, मारना। ये सुन अयांश ने वॉश जमीन पर दे मारा और विनीत को अंगली दिखाते हुए बोला, मुंह बंद रखा कर, वरना किसी दिन जरूर मारा जाएगा। विनीत मुस्कुराते हुए बोला, तो आज ही वो दिन बना दे। ये सुनते ही अयांश फिर उसकी ओर आया और एक मुक्का मुंह पर जमाकर ड्रेसिंग की ओर चला आया और सारा सामान गुस्से से जमीन पर पटक खुद को आईने में देख बोला, नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत, आई हेट हर। उसकी तकलीफ, उसका दर्द या उससे जुड़ी कोई बात मुझे कमजोर नहीं बना सकती है। मैं उससे प्यार नहीं करता, सुना तुमने, वो सिर्फ मेरी नफरत के लायक है, सिर्फ नफरत। गुस्से से खुद को ही आईने में घूरते हुए तभी विनीत बेंट से उठा और अयांश के पास आकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। दोनों बेहद गुस्से से एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। एक लफ्ज मत बोलना, अयांश ने गुस्साते हुए कहा। तभी विनीत ने उसे अपनी तरफ खींचा और फट से अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं पता तेरी इस नफरत का अंजाम क्या होगा, पर डरता हूं कि ये नफरत तुझे भी ना खा जाए। जान चली जाएगी बेशक मेरी, पर उसके प्रति मैं अपनी नफरत कम नहीं होने दूंगा।
अयांश ने विनीत की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए कहा। वजह जान सकता हूँ? विनीत बोला। ना जाने तो बेहतर है। अयांश ने इतना ही कहा कि विनीत की गर्दन में अपना सिर छुपा कर रो पड़ा। ये देख विनीत के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। विनीत डर गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी अयांश को रोते नहीं देखा था। अयांश का ऐसे रोना, आरवी से नफरत करना, कहीं अयांश टूटकर बिखर ना जाए, ये सोच विनीत घबरा उठा। शायद वजह बहुत बड़ी है, सोच विनीत ने अयांश को कसकर अपने सीने से लगा लिया। अयांश की सिसकियां विनीत की आंखों में भी आंसू ले आईं। उसने अयांश को रोने से नहीं रोका, बल्कि खुद भी उसके साथ रो पड़ा। दोनों गले लगे कुछ देर आंसू बहाते रहे। तभी विनीत ने अयांश को ले जाकर बेंट पर बिखाया और उसे पानी का ग्लास थमाकर खुद सिर पकड़कर उसी के पास बेंट पर बैठ गया। अयांश ने पानी पिया और फिर ग्लास में पानी भरकर विनीत की ओर ग्लास बढ़ाते हुए बोला, ले पानी पी। विनीत अयांश की ओर देखते हुए बोला, पहले मारता है और फिर पानी पिलाता है, शर्म नहीं आती? अयांश उसके हाथ में ग्लास थमाते हुए बोला, तुझे भी तो नहीं आई, और तूने भी तो यही किया, पिलाया ना मुझे पानी, मारा तो तूने भी। हाँ तो क्या, चुपचाप मार खाता, आज मौका था, मैंने भी हाथ साफ कर लिया, बेचारा मेरा जबड़ा, विनीत अपना गाल सहलाते हुए बोला। जोर की लगी क्या? अयांश ने विनीत का गाल छूते हुए पूछा। तुझे तो नहीं लगी सिर में कहीं? मारकर आज तक तो नहीं पूछा। जोर की लगी, जो आज पूछ रहा है। आज से पहले इतना कब मारा? पहली बार लड़े हैं इतना, अयांश जमीन की ओर देखते हुए बोला। ओ हाँ, छोटी मोटी बहसबाजी हुई है, एक दो मुक्के थप्पड़ हुए, पर आज जितनी बड़ी लड़ाई मारपीट नहीं हुई हमारी, घर में तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब तुझ पर हाथ उठाया था, बस तू ही उठाता आया है। अब तू टाइम से सुधर गया, मुझे सुधारना पड़ रहा है। हमारी बड़ी लड़ाई मुबारक हो यार, विनीत हंसते हुए बोला। ये सुन अयांश ने उसे घूरा तो विनीत ने मुंह पर अंगली रख ली। अयांश ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल विनीत की ओर बढ़ाते हुए बोला, पानी पी, और हाँ, मैं तुझे मारकर तेरा अंतिम संस्कार भी कर सकता हूँ अपने हाथों, समझा? फिर पानी पूछना कौन सी बड़ी बात है। विनीत फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ फट से पानी पीता है और ग्लास टेबल पर रख बोला, अयांश मेहरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अयांश बेंड से उठते हुए बोला, हुलिया ठीक कर अपना, फिर रूम ठीक करते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था जिसकी जुबान इतनी चलती है उसके हाथ पैर भी बड़े चलते हैं।
ये सुनते ही विनीत फट से उठा और अयांश का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुझे ज्यादा लगी क्या? सॉरी यार, मेरे जबड़े को आदत है तुझसे पिटने की, पर तेरा सॉफ्ट जबड़ा जो कोई टच भी ना करता, मारना तो दूर, टूट वूट तो नहीं गया? तुझे शांत करना था तो हाथ पैर चलाने पड़े, वरना मैं अब तक कब्रिस्तान होता और फिर तू आंसू बहाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद के बचाव के लिए एक दो खुराक देनी पड़ी तुझे, अभी उम्र ही क्या है मेरी, बहुत कुछ देखना है ना। अच्छा सच बता, ज्यादा तो नहीं लगी? डॉक्टर है यहीं, दिखा लेते हैं। अयांश विनीत के हाथ नीचे कर बोला, ठीक हूं मैं, टेंशन मत ले, तू हमेशा पिटता है, आज मैं पिट लिया, अब चल रूम साफ करते हैं। कहते हुए अयांश ने जमीन पर पड़ा ब्लैंकेट बेंड पर फेंक दिया। विनीत मुंह बनाते हुए बोला, अभी हमारी धुलाई हुई और अब सफाई, रहने देना, राधे कर देगा। अयांश नीचे पड़े पिलो उठाते हुए बोला, इस रूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, दादू तक तो बिल्कुल नहीं। विनीत सोचते हुए बोला, सही बोला, वैसे भी राधे तो दादू का है ही चमचा। अयांश उसकी ओर देखते हुए बोला, राधे नहीं, तुम हो उनके चमचे, तुम बस मुंह ना खोलना, वरना। तभी विनीत ने मुंह पर अंगुली रख ली, बिल्कुल नहीं, मरना थोड़ी है, वैसे भी तेरे मना करने के बाद राधे जुबान नहीं खोलता, तो मुझ ना चीज की क्या औकात? अयांश बोला, औकात तो अयांश मेहरा की भी कुछ नहीं रहती जब दिनकर मेहरा सामने आते हैं, दादू हैं वो, भूलो मत, भनक भी लगी ना यहाँ जो हुआ उसकी, तो मुझसे तो पता नहीं, क्योंकि मैं निकल सकता हूँ उनके हाथों से, तुम और राधे नहीं, उल्टा लटका कर सच बाहर निकलवा सकते हैं तुम दोनों से, जानते हो ना? विनीत हाथ जोड़ते हुए बोला, जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, हे भगवान, दादू, दोस्त, तो ठीक है, ऐसे पर ऐसी बीवी ना दे दे, सारी उम्र गले पर तलवार रखकर नहीं निकाल सकता मैं, आई होप आप समझो प्रभु, इस बालक पर रहम करना। चल चल, जल्दी सब साफ करते हैं, किसी को पता ना चलेगा, तुझे भी नहीं, कि तेरे साफ सुथरे कमरे का हमने कबाड़ा किया था। इतना कह विनीत अयांश के साथ कमरे की सफाई में लग गया। सफाई के दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ न बोले, दोनों ओर खामोशी छा गई। उधर पास वाले रूम में आरवी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर नर्स को सब दवाइयों के बारे में समझा रहे थे और नीचे हॉल में दिनकर जी आरवी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने में लगे थे और साथ में उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्रमशः